आयुब अध्याय 31। आइए हम आयुब की पुस्तक का अध्ययन जारी रखते हुए अध्याय 31 खोले। आयुब के सामने उसके मित्र अब खामोश है। बिलदाद भी अपनी अंतिम राय दे चुका है, परंतु आयुब कहना आरंभ रखता है। आयुब का ये अंतिम वार्तालाप सबसे लंबा है। ये आयुब का अंतिम वार्तालाप है। इसके बाद वो परमेश्वर से बातें करेगा, परंतु आयुब अपनी धार्मिकता और भलाई जो अब तक उसने की है उसकी चर्चा कर रहा है। अध्याय 31 पद 1 से लेकर 12 तक। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वो कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वो मेरी गति नहीं देखता और क्या वो मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं, वो कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, वो मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखड़ डाली जाए। यदि मेरी हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरी के लिए पिसे और पराए पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वो तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वो मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। ये वे दोष है जो आयुब के दोस्त उस पर लगा रहे हैं, परंतु वो इन सब का इनकार कर रहा है। वो कहता है, मैं किसी कुवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? मैंने परमेश्वर से ये वाचा बांधी है। ये रोचक है कि यीशु कहता है, मती 5:28 पद, जो कोई किसी स्त्री को बुरी कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। आयुब कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं। यदि मैं व्यभिचार का दोषी हूं, तो मेरा दंड ये हो कि मेरी पत्नी के साथ भी व्यभिचार किया जाए। मैं तो निर्दोष हूं। परमेश्वर तराजू में तौल कर मुझे परख ले। मुझे जो भी न्याय प्रभु से मिले वो निष्पक्ष हो। मैं तो अनुचित दंड पाता हूं, क्योंकि मैं इन अपराधों का दोषी हूं ही नहीं। लालसा के बारे में आयुब 31 अध्याय 12 में कहता है, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वो मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। नीति वचन 6:25-26 में लिखा है कि मूर्ख स्त्री के चुगल में पड़ने वाला मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। यदि लालसा पर लगाम ना हो तो वो महाक्लेश का कारण हो जाती है। इसके कारण महापुरुष भी नाश हो जाते हैं। आयुब दहनशील लालसा को भस्म करने वाले आग कहता है। अध्याय 31 पद 13 से लेकर 15 तक। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वो आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वो उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी। आयूब यहां सच कह रहा है कि उसने अपने सेवकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, उसने उनके साथ सदैव बराबर का व्यवहार किया था। क्या यह उनका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? ये बड़े ही दुख की बात है जब मनुष्य अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। वो ये भूल जाता है कि हम सबकी रचना परमेश्वर ने की है, उसके सामने ना कोई पद है, ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा। ये बात स्त्री और पुरुष तथा दास और स्वतंत्र सबके लिए है। मसीह यीशु में हम सब एक हैं, परंतु मनुष्य को देखने से ऐसा लगता है कि वो सदैव अपने आप को दूसरे से ऊपर उठाने के प्रयास में लगा रहता है। वो सदैव अपने आप को बड़ा बनाने के प्रयास में लगा रहता है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे सामने झुके, मुझे प्रणाम करें आदि। ये बड़े दुख की बात है कि मनुष्य ऐसी मर्यादा की रचना करना चाहता है जिसमें उसे मर्यादा एवं चापलूसी का व्यवहार खोजना पड़ता है। आयूब कहता है कि जब उसके सेवकों ने उसे तर्क वितर्क किया, तब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि उसके विचारों में हम सबका जन्म गर्भ से हुआ है और वो दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है। वो ये भी कहता है कि परमेश्वर गरीबों का पक्ष लेता है। ये बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर गरीबों की पुकार सुनता है। उसने कहा, जब उनकी पुकार मुझ तक पहुंचती है। परमेश्वर गरीबों का शोषण करने वालों से पलटा लेने के विषय में भी कहता है, जब शोषण के कारण गरीबों की पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है, तब वो उनकी पुकार को सुनकर उनके उत्पीड़कों से पलटा लेता है। अध्याय 31 पद 16 से लेकर 22 तक। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, वो मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, वह मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हों, परंतु वो मेरे लड़कपन से ही मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, वो किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। यदि यह सच है कि मैंने गरीबों की सहायता नहीं की, नंगों को वस्त्र नहीं पहनाया और भूखों को भोजन ना दिया, और मैं अपने सुख विलास में रहा, तो मेरे दोनों हाथ टूट जाए। आयूब अपने आप को ही श्राप दे रहा है कि यदि मैंने ऐसे किया हो तो मेरे साथ भयंकर घटनाएं घटे। ये बड़ी रोचक बात है कि उन दिनों संपूर्ण पूर्वी संस्कृति में अतिथि सत्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था। अतिथि की सेवा, जरूरमंदों की सेवा अत्यधिक महत्वपूर्ण था, विशेष करके यदि कोई मनुष्य यात्रा कर रहा हो। आपको ध्यान होगा कि उत्पत्ति 18 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, जब स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आए, तब वो नहीं जानता था कि वे स्वर्गदूत हैं। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसके आवास में चले और उसके साथ भोजन करें तथा विश्राम भी करें, क्योंकि रात होने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि उस युग में अतिथि सत्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था। आज कलीसिया में भी अतिथि सत्कार का होना एक महत्वपूर्ण बात है। पौलुस के निर्देश अनुसार जब किसी पर्यवेक्षक का चुनाव किया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिन्होंने अतिथियों की सेवा का उचित प्रदर्शन किया हो। मेरे विचार में यदि हम अतिथियों की सेवा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि कोई घर आता है या कोई परदेशी है तो अवश्य ही हम उनका स्वागत करें, उन्हें भोजन दें और उनकी सेवा करें। बाइबल के अनुसार इब्रानियों 13:2 पाहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्ग दूत की पाहुनाई की है। मेरे पिताजी बाइबल के इस निर्देश का यथावत पालन करते थे। ये निर्देश हमारी कलीसिया में मार्गदर्शक होता था। उन्होंने आयुब की पत्री में पढ़ा था कि मुंह देखी बातें करना उचित नहीं है। वे याकूब की पत्री का पालन करते थे, याकूब 2:3, तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू यहां अच्छी जगह बैठ, और इस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह, या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ। इस कारण जब लोग फटे पुराने कपड़ों में आराधना में आते थे तब मेरे पिताजी बड़े आदर से उन्हें सामने ले जाकर बैठाते थे। मेरे पिताजी बहुत बहादुर, भड़कीले और तौर तरीके वाले व्यक्ति थे। वे उन्हें मुख्य मुख्य स्थानों में ले जाकर बैठाते थे। वे उन्हें अपना घर भोजन पर आमंत्रित करते थे। कुछ व्यक्तियों के शरीर से तो दवाइयों की गंध भी आती थी। यदि मैं आपको कुछ अतिथियों के बारे में बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार ऐसा ही व्यक्ति को हमारे पिताजी ने घर आमंत्रित किया। वो 2 हमारे पास रुका भी। वो बड़ा ही विचित्र मनुष्य था। यदि मेरी माता मुझे कुछ काम करने को कहती, मेरे उस काम को करने के बाद वो मुझसे कहता कि मुझे इस काम को करने में 27 लगे, जबकि मुझे वो काम 15 में करना था। एक बार फिर प्रयास करो और इस बार वो काम 15 में पूरा करो। वो हर काम का समय देखता था कि कोई काम 1-1 में ठीक हो रहा है या नहीं। हमें बाद में पता चला कि वो व्यक्ति बैंक लुटेरा था। उसने अनेक बैंकों को लूटने की योजना बनाई थी। यही कारण था कि वो समय का इतना ध्यान रखता था और समय उसके मस्तिष्क का एक भाग बन गया था। जब वो अपने बारे में बताता था कि उसने क्या क्या किया और कैसे बड़ी बड़ी जेलों से निकल भागा, तो हम मंत्रमुग्ध हो बैठकर सुनते रहते थे। हमारी उससे भेंट कैसे हुई ये भी बड़ी रोचक बात है। मेरे पिताजी प्रत्येक रविवार जेल जाकर प्रचार करते थे। एक बार वो उपदेश दे रहे थे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यीशु ने ये प्रतिज्ञा दी कि यदि हम उसके नाम में मांगे तो स्वर्गीय पिता उसे पूरा करेगा। परमेश्वर को परख कर देखो कि उसका वचन सच है या नहीं। ये व्यक्ति जिसका नाम जिमी रेनॉल्ड था, ये सबसे पीछे बैठा था। वो उस स्थान पर भी नहीं आया जहां कैदी एक दूसरे से मिल रहे थे। वो ध्यान से सुन रहा था, परंतु वो लोगों को शायद दिखाना नहीं चाहता था कि वो सुनने में रुचि रखता है। जब मेरे पिताजी ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया तब वो अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति से कहने लगा, आपने सुना कि वो क्या कह रहा था? उसने कहा, मैं अनेक जेलों से भागा हूं और ये भागने का एक नया तरीका होगा। उसने एक व्यक्ति से कहा, हम दोनों घुटने टेककर प्रार्थना करें कि आने वाले रविवार तक हमें इस जेल से बाहर निकलने में सहायता करें। यदि परमेश्वर हमें रविवार तक यहां से निकल जाने में सहायता करेगा तो हम इस व्यक्ति के चर्च में अवश्य जाएंगे। मेरे पिताजी संडे स्कूल के अध्यक्ष भी थे। इसलिए हम आराधना के आरंभ होने से आधा घंटे पहले चर्च पहुंच जाते थे। इस रविवार जब हम आराधनालय पहुंचे तब ये व्यक्ति वहां चहलकदमी कर रहा था। जब उसने मेरे पिताजी को देखा तो हमारा अभिवादन किया और द्वार खोलने में हमारी सहायता की और कहा, आज आपको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम जिमी है। मेरे पिताजी ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या आप हमारे साथ आकर आराधना करेंगे और उसके बाद भोजन हेतु घर चलेंगे। उससे हमारी भेंट इस प्रकार हुई थी। उसके चले जाने के पश्चात मेरे पिताजी जेल अधिकारियों से मिले और उनसे पूछा कि वो व्यक्ति जो हमारे घर में सप्ताह से अधिक अतिथि बना रहा वो जेल से आज़ाद कैसे हुआ। जेल अधिकारी ने बताया कि वो हमारी भूल का परिणाम था। वे कैदी जो अन्य जेलों से भागे हैं हम उनके पहचान पत्रों के ऊपर लाल रंग से होल्ड लिख देते हैं, परंतु हमारा वो अधिकारी जो इनके पहचान पत्र बना रहा था नया था और उसने होल्ड शब्द ऊपर लिखने की अपेक्षा नीचे लिख दिया। जिम्मी के ऊपर कोई वैधानिक आरोप नहीं होने के कारण हम उसे अधिक समय तक नहीं रोक सकते थे, परंतु उस लाल होल्ड के कारण हम उसे रिहा नहीं कर सकते थे। हमें उसे उस जेल में फिर से पहुंचाना था जहां से वो भागा था। दूसरी भूल हमसे ये हुई कि हमने उसका पहचान पत्र पूरा बाहर निकाल कर नहीं देखा, नहीं तो उसके नीचे लाल रंग से लिखा होल्ड हम देख लेते। अतः रविवार की सुबह उसे पुकारा गया और उसे कहा गया कि वो आज़ाद है। अचंभित होकर उसने पूछा, मैं क्यों हूं? उन्होंने कहा, तुम आज़ाद हो। उसने पिताजी से कहा, श्रीमान सिमित जी, मैं इस देश में अनेक जेलों से भागा हूं, परंतु आज पहली बार मैं जेल से इस प्रकार निकला हूं। परंतु ये तो वास्तव में स्वर्गदूत की सेवा नहीं थी। मैं अपने बचपन के ऐसे अनेक किस्से आपको सुना सकता हूं, परंतु हमें प्रतीक्षा करना होगा। आयुब ने कहा, अध्याय 31 पद 30 से लेकर 33 तक, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे ढेरे के रहने वालों ने ये ना कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहां का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो, परदेशी को सड़क पर टिकाना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर, उत्पत्ति की पुस्तक संभवतः आयुब की पुस्तक के बाद लिखी गई है, परंतु आदम की कहानी इस युग में प्रचलित थी और आयुब आदम द्वारा अंजीर के पत्तों को सील कर अपने पाप को ढांपने के बारे में जानता था। अध्याय 31 पद 33 और 34, अपने अधर्म को ढांप लिया हो इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वो कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला। अध्याय 31 पद 36, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाया फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। उसने कहा, अध्याय 31 पद 37 से लेकर 40 तक, मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघेरियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजदूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले जड़बड़ी और जव के बदले जंगली घास उगे। आयुब के वचन पूरे हुए हैं। बस बहुत हो गया, मैं निर्दोष हूं। अपने मित्रों के समक्ष उसके निर्दोष होने का ये अंतिम बयान है।